अपनी जिंदगी के बारे में परेशान मत हों, बल्कि सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें। मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 25 से 34 आयत। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं ना काटते हैं ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिंद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? इसलिए फिक्रमंद होकर यह ना कहो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। हम नए सिरे से पैदा हुए भी हत्ता के गुनाह की माफी हासिल करने के बाद मुस्तकबिल के बारे में परेशान होने का रुझान रखते हैं। ये फिक्रें ऐसी हैं, मसलन अब मैं कैसे जिंदा होऊंगा, मुझे खाने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे पहनने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे पैसे कमाने के लिए क्या करना चाहिए, और मुझे कैसे जिंदा रहना चाहिए। इसी तरह हमारे दिलों में हम मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद दिल रखते हैं। मैं देखता हूं कि नए सिरे से पैदा हों के दरमियान वो लोग जो अब भी बच्चे हैं अपनी जिंदगियों के बाकी हिस्सा के बारे में परेशानियों को इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते कि खुदा उनकी मदद करता है, और वह तजर्बा नहीं कर चुके हैं कि खुदा उनकी राह की राह रहनुमाई करता है। बेशक ये सिर्फ फितरती बात है कि हम परेशान होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। हद तक एक शख्स जो इस दुनिया में पैदा हुआ है अपने आप के लिए सख्त मेहनत करता है। वो खुदा पर ईमान के वसीला से जिंदा नहीं रहेगा, और अपनी जाती कोशिशों और ताकत पर इनसार करने की बदौलत जिंदा रहने की आदत रखते हैं। बस उनके हत्ता के नए सिरे से पैदा होने के बाद पहली चीज जिसके बारे में वो परेशान है यह है कि उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें क्या पीना चाहिए, और उन्हें कैसे जिंदा रहना चाहिए। ताहम खुदावंद हमें बताता है कि नए सिरे से पैदा हुओं को सबसे पहले क्या सोचना चाहिए। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। वो फरमाता है कि खुदा की बादशाही खुदा की रास्तबाजी की तलाश करो। पहले कलीसिया के साथ मुतहद हो और उसके काम को तलाश करो जो खुदा का और उसकी बादशाही और लोगों को बचाने का काम करता है। दुआएं मांगे, तब मैं जिस्म के मैदानों में तुम्हारी तमाम जरूरियात को, मसलन क्या खाना है क्या पीना है कैसे रहना है, पूरा करूंगा। मैंने भी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा जितनी जल्दी मैं गुनाहों से आज़ाद हुआ। मुझे कैसे जिंदा रहना चाहिए, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मुझे रोजी के लिए क्या करना चाहिए। मैं ऐसी बातों के बारे में परेशान हुआ। अगर यकीनन चीजों की तादाद मौजूद होती है जो मुझे करनी थी, तब मैं वैसा ही कर सकता था, लेकिन जब कोई मकदार मुकर्रर चीज मौजूद नहीं थी और मैं नहीं जानता था उस वक्त क्या करना है। वो जो गुनाह की माफी पाने से पहले कुछ पैसे जमा कर चुके थे कम परेशान हो सकते हैं। ताहम कोई शख्स जो गुनाह की माफी पाने से पहले सिर्फ तालीम गाह में है, मसलन मेरी तरह, हत्ता के ज्यादा परेशान होता है। मैं बच ना सका बल्कि परेशान था, और इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूं। हमारी कलीसिया में नौजवान भाई और बहनें जो हकीकी दुनिया में तालिब इल्म या शुरू करने वाले काम से मुतल्लिक हैं, इस ख्याल से हौसला शिकन हो सकते हैं कि वो कैसे इस दुनिया में जिंदा रह सकते हैं। हमें खाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें क्या पहनना चाहिए, ऐसी बहुत सारी फिक्रें मौजूद हैं। ताहम खुदावंद हम सबसे फरमाता है, ऐसी चीजों के बारे में फिक्र मत करें, यह है जो नए सिरे से पैदा हुए नहीं कर सकते, जिससे वो परेशान होते हैं। तब हम अपने जहन में ऐसा दिल रख सकते हैं, हमारा खुदावंद हमारे हालात के बारे में महज इशारा नहीं करता, यह हकीकी मसला है और कैसे हम इसके बारे में परेशान नहीं हो सकते। खाने, कपड़े और रहने की जगह के मसाइल अभी इस पर इनसार करते हैं, हम कैसे उनके बारे में परेशान नहीं हो सकते। ताहम खुदावंद मजबूती से हमें फरमाता है कि खुदावंद यूं फरमाता है, ये है जो गैर कौमें किस फिक्र में रहती हैं, परेशान मत हो, आप कैसे रह सकते हैं। पहले खुदा की बादशाही के बारे में और अपनी जिंदगी के रहने के बारे में सोचे, जो ही आप उसकी रास्तबाजी पर अमल करते हैं। खुदावंद फरमाता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं ना कोटनियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हकीकत में अगर हम ईमान रखते हैं खुदावंद ने क्या फरमाया, तो कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगियों के बारे में परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद सीधी बात में हमें मलामत करता है। अशिया के बारे में परेशान मत हो, यह है गैर कौमें क्या मांगती हैं, यह है वो लोग जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए क्या मांगते हैं। जंगली शोषण को देखो, वो कैसे बढ़ती हैं, वो ना मेहनत करती है ना काटती हैं। अगर खुदा मैदान की घास को यूं पहनाता है जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, तो क्या वो तुम्हें इससे ज्यादा ना पहनाएगा? ऐ कम एतकादो, प्यारे साथी मसीहों, मैदान में शोषण कैसे बढ़ती है? क्या वो खुद ब खुद फूटना, भरना और खिलना शुरू करती है? ये है क्योंकि खुदा उन्हें बोता है, उन्हें सूरज की रोशनी देता है जैसे उनकी जरूरत है, उन्हें बारिश देता है, उन्हें खिलाता है। खुदा भी फरमाता है कि खुदा मैदान की घास की ऐसी फिक्र करता है, तब वो कितनी ज्यादा आपकी फिक्र करेगा जो रास्तबाज लोग हैं। प्यारे साथी मसीहों, उन फिक्रों के दरमियान जो हम रखते हैं, यकीन दहानी में बड़ा फर्क है जो खुदा की सच्चाई के कलाम से हासिल होती है। अब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने परेशान हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है जो हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मुंह सादगी से ये कहते हुए बंद करता है, जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो। खुदा शोषण को बढ़ने के लिए इस तरह सूरज की रोशनी और बारिश अता करता है, तब क्या वो हमारी फिक्र नहीं करेगा जो उसके बेटे हैं? वो ईमान रखें, जो खुदा पर एतकाद रखता है, तब आप खुदा के साथ बात कर सकते हैं। हमें खुदा के साथ बातचीत करने के लिए क्या करना होगा? खुदा के कलाम पर ईमान रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं जिस तरह यह है, तो हम ईमान के वसीला से उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर खुदा ऐसा फरमाता है जब हम उसके कलाम के मुताबिक उस पर ईमान रखते हैं, खुदा मुझे पहनाएगा, मुझे खिलाएगा, मेरी जिंदगी में मदद करेगा, मुझे खुदा से ताल्लुक रख सकते हैं और एक हो सकते हैं, उसके साथ बातचीत करने के काबिल हो सकते हैं और अपने ईमान के तौर पर जवाब भी ले सकते हैं। जंगली शोषण पर गौर करो, क्या आप ईमान रखते हैं कि जो यूं इकरार करता है? खुदा ने जंगली शोषणों को बढ़ाया, मैं खुदा के लोगों में से एक और खुदा का बेटा हूं, खुदा मेरा बाप और चरवाहा है, बस मैं ईमान रखता हूं कि वो मुझे खिलाएगा, मुझे पहनाएगा। फिक्रों को परे हटाने का वाहिद तरीका ईमान रखना है। अय खुदा, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। खुदा के सामने इन अल्फाज के अलावा कोई दूसरे अल्फाज नहीं है, कोई दूसरे अल्फाज नहीं है जो हम कह सकते हैं। प्यारे साथी मसीहो, जब खुदावंद एक बात फरमाता है, क्या हम उसके खिलाफ बहस करके कोई दूसरी चीज कह सकते हैं? आज के सहीफा हवाला में खुदा हमसे वादा करता है कि वो हर चीज मुहैया करेगा जिसकी हमें जरूरत है, जब हम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं। जब हम ईमान के वसीला से अपने आप के लिए यह हवाला करते हैं कि हम कुछ दूसरा नहीं कह सकते, हम उसके अलावा कोई बहाना नहीं कर सकते कि हम ईमान नहीं रखते। मैं जंगली शोषणों को बढ़ा सकता हूं, अगर तब क्या मैं तुम्हें नहीं बढ़ा सकता हूं? मैं सलाना पौधों को बढ़ा सकता हूं, अगर तब क्या मैं अपने बच्चों को नहीं बढ़ा सकता? اب اس پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ بارش ایسی چیز ہے جو خدا کسی طرح آسمان سے برسانے کے لیے لاتا ہے، اور سورج کی روشنی ایسی چیز ہے وہ کسی طریقے سے دیتا ہے اور اس لیے گھاس بڑھتی ہے۔ لیکن ہم صرف بارش اور سورج کی روشنی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اے خدا، کیا آپ نہیں جانتے ہم زندہ رہنے کے لیے کتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے؟ بے شک کوئی راہ نہیں ہے کہ خدا نہیں جانتا۔ اگر خداوند فرماتا ہے کہ ہم سب کو جانتا ہے، تب ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا صلاحیت، حکمت، برکتیں بھی بخشے گا جو ہمیں اس طرح اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے قابل کریں گی۔ اگر خدا نے سوسن کو ایک مثال بنا کر ہمیں بتانے کے واسطے لیا کہ خدا نے ہر چیز بر وقت مہیا کی، تب ہم ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے ہر چیز بر وقت مہیا کرے گا جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہمیں اس پر اپنا ایمان گرمانے کے لیے یہ کہتے ہوئے ایک دوسری مثال دیتا ہے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ متی کی انجیل 6 باب اس کی 26 آیت۔ تاہم بعض بے اعتقاد لوگ اس آیت کو یہ کہتے ہوئے اس طرح بہودہ تشریح کرتے ہیں، دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ کتنی محنتی ہیں۔ اگر ہم ان پرندوں کی مانند اس دنیا میں سخت محنت کرتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، تو ہم اس دنیا میں اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ وہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ ایسی دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی سخت محنت کرتا ہے تب وہ کافی خوراک رکھ سکتا ہے اور کثرت سے رہ سکتا ہے۔ اس قسم کی دلیلیں ایمان کے وسیلہ سے مختلف ہیں جو خداوند ہمیں بتاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں ہمیں خوراک کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؟ تاہم کیا کوئی شخص امیر ہو جاتا ہے محض کیونکہ وہ محنت کرتا ہے؟ ہر کسی کے لیے یہ صورتحال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مہینوں سے، حتیٰ کہ سال بھر سے اپنی نوکری کی جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹلیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ اس آیت کے وسیلہ سے خداوند کیا فرما چکا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم خوراک رکھ سکتے ہیں جب ہم محنت کرتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ خدا ہمارا باپ، جس نے ہمیں بچایا، ہمیں کیا کھانا پینا اور اس دنیا میں اپنی زندگیاں قائم رکھنے کے لیے پہننا ہے، مہیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں کھلائے گا اور ہم راستبازوں کو پہناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر راستباز شخص کی فکر کرے گا جو خوشخبری کو پھیلانے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس آیت کا خاص نقطہ یہ ہے کہ جب تم میرے بیٹے ہو، کیا میں تمہیں بھوکا ماروں گا، تمہیں نہیں پہناؤں گا؟ جب تم میرے بیٹے ہو، جبکہ تم اس دنیا میں رہتے ہو، جبکہ تم اپنی زندگی رکھتے ہو، جبکہ تم اس دنیا میں کرنے کے لیے کام رکھتے ہو، تو کیا میں تمہاری فکر نہیں کروں گا؟ میں نے اسے بے فائدہ محسوس کیا جب میں نے اس حوالہ کو نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے پڑھا، لیکن یہ صورتحال زیادہ نہیں ہے۔ جب میں پہلے خداوند سے ملا، میں نہیں جانتا تھا کیا کرنا ہے۔ بس میں نے پہلے سوچا کہ میں زندہ رہنے کے لیے ایک کاروبار کروں گا۔ حقیقی معاملہ کے طور پر میں اپنے ذہن میں کوئی دوسرا منصوبہ نہیں رکھتا تھا۔ واقعی میں افسردہ تھا جب میں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے پہلی بار خدا سے ملا۔ فکروں کی وجہ سے کیسے زندہ رہنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے، فکروں نے نجات حاصل کرنے کے بعد کیسے خوشخبری کو پھیلانا ہے، پچھلی نسش سنبھال لی، مجھے کیسے خدا کی کلیسیا کے ساتھ متحد ہونا چاہیے، اس سے بھی پچھلی نسش لے لی، اور میں آزمائش میں تھا جب مجھے کیا کرنا چاہیے، جب میں نے اپنے آپ کے لیے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہوا مصروف تھا۔ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ یہ ہے غیر قومیں کیا مانگتی ہیں۔ تاہم میں نے اس کے کلام کے خلاف بہت زیادہ یہ کہتے ہوئے سرکشی کی کہ یہ تیرا منطق ہے اور یہ میرا منطق ہے، ابھی میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ جب میں نے آگے دیکھا مجھے کیسے اب زندہ رہنا چاہیے، تو یہ تاریخ تھا۔ جب میں نے ارد گرد حالات کو دیکھا تو یہ حتیٰ کہ زیادہ برے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کیا کرنا ہے، اور میں اس وقت کوئی چیز نہیں جانتا تھا۔ لیکن ایک چیز سے میں پر یقین تھا کہ خدا میرا باپ بن گیا ہے، یعنی خداوند میرے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ اور تب خداوند نے فرمایا، اگر تم میری رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। इसका मतलब था कि खुदावंद ने मुझे सच्चाई की खुशखबरी बख्शी जो मुझे ईमान के साथ जिंदा रहने के काबिल करती है। और उसने मुझे फरमाया, पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। हाँ, ये तरीका है जिससे मैं अब जिंदा रह सकता हूँ। मैंने अपने आप को खुदा के काम के वास्ते वफ करने का जहन बनाया। मैंने इस कलाम को पकड़ा और हर चीज़ के लिए दुआ मांगना शुरू की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मैंने दुआ मांगी, आए बाप खुदा, मेरे पास कोई पैसे नहीं। आए खुदा, मैं पानी और रूह की खुशखबरी को फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पैसे नहीं। मुझे पैसे अता कर, मुझे चीज़ें अता कर। मेरे पास इमारत नहीं है, मुझे गिरजाघर की इमारत दे, मुझे जाने दे। मैं पानी और रूह की खुशखबरी को फैलाने के लिए किताबें लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास छपा खाना नहीं। मुझे एक अच्छा छपा खाना दे। अब मेरा छोटा ईमान बढ़ चुका है और मैं खुदा के काम के लिए कुछ बड़ी चीज़ें मांगता हूँ। मैं तजर्बा कर चुका हूँ कि खुदा हर चीज़ का जवाब दे चुका है। आया ये बड़ी या छोटी चीज़ है, यह ईमान के शख्स के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे बढ़ने के काबिल करती है। इसका मतलब है कि हम इसका एहसास किए बगैर ईमान के लोग बन जाते हैं। जब कोई चीज़ वाकया होती है तो मैं सोचता हूँ खुदा बख्शता है अगर हम दुआ मांगते हैं, और कुछ मौजूद नहीं जिससे भाइयों और बहनों को परेशान होने की ज़रूरत है। खुदा मदद करता है, खुदा भाइयों और बहनों की मदद करता है। अगर भाई और बहनें मुसीबत में हैं और मुश्किलों में हैं, खुदा बख्शता है कि अगर हम दुआ मांगते हैं हमारा ईमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। जितनी ज़्यादा हम ईमान में दुआ मांगते हैं, ये है क्यों खुदावंद फरमाता है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बालातर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। फिलिप्पियों का खत, उसका 4 बाप, उसकी 6 से 7 आयत। सबसे बढ़कर हमारा खुदा बहुत बड़ी कसरत से हमें देने के काबिल है जो कुछ हम मांगते या सोचते हैं। इफिसियों का खत 3 बाप, उसकी 20 आयत। चूंकि हम ये ईमान रखते हैं, हम खुदावन से दिलेरी से मांगते हैं। खुद ब खुद कोई चीज़ शुरू करने की बजाय, हर इंसानी तरीके को आयत करने की कोशिश करने की बजाय हम दुआ मांगते हैं, अय खुदा हमें यह अता कर, हमें वाकई इसकी ज़रूरत है। अब हत्ता कि अगर हम अपनी आंखों के साथ कोई मजबूत निशानी नहीं देख सकते, हम खुदा से हमें अता करने के लिए मांगते हैं। क्यों? ये है क्योंकि दुआएँ चीज़ों को वाकया करती हैं। बस ये हमारे ज़ाती तरीक़ों से जिसकी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा बेहतर है। जब मैं नए सिरे से पैदा हुआ था, मैं अपनी रोज़ी कमाने के लिए बर्तन बेचने का कारोबार चलाने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन जो ही मेरा ईमान बढ़ा, मैं अपनी ज़ात से कुछ करने की कोशिश करने की बजाय दुआ मांगने के काबिल हुआ। अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हम पहले खुदा से उसकी मदद के लिए दुआ मांगेंगे, हत्ता कि अगर कोई जवाब नहीं है हम दिल से दुआ मांगते हैं, अरे खुदा हमारे लिए ये कर, हमारे वास्ते वो कर। जब हम एक लंबे अरसे के लिए और मुस्तकिल दुआ मांगते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जवाब देता है। तब हम जवाब हासिल करते हैं और दूसरे दुआया मौजूद के साथ फिर दुआ मांगते हैं। इसी तरह हम तजर्बा करते हैं कि हम खुदा से जवाब हासिल करते हैं, इसलिए हम ईमान के लोग बन जाते हैं। हम ज़्यादा मजबूत ईमान रखने तक पहुँचते हैं जो खुदा पर यकीन रखता है। हम मजबूती से ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमें खिलाता है, हमें पहनाता है और हमें ज़िंदा रखता है। जब हम खुदा की रास्तबाजी के लिए ज़िंदा रहते हैं तो हम खुदा पर ईमान को फ़रोग देते हैं। इसलिए जब हम खुदा की रास्तबाजी के लिए काम करते हैं तो हम ज़्यादा परेशान नहीं होते अब से हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना, क्या पहनना चाहिए। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम दुआ की तरफ रुजू करते हैं, ऐ खुदा हमें फिर अता कर, हमारे भाइयों और बहनों को अशिया अता कर, हमें सेहत अता कर, हमें ये अता कर, हमें वो अता कर। हम दुआ की तरफ रुजू लाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें महज बैठना और दुआ मांगनी है और खुद कुछ नहीं करना है। हमें पहले दुआ मांगनी और तब खुदा की रास्तबाजी को तलाश करना है, तब खुदा हमें अता करता है क्या खाना पीना है और जिंदा रहने के लिए चीज़ें और हर दूसरी चीज़ अता करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप ईमान रखेंगे, हर वो चीज़ अता करता है। हकीकत में हम जिंदा रह सकते हैं और अब तक अच्छी तरह उसका काम कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे लिए हर चीज़ मुहैया कर चुका है। इसलिए इस तरह मुस्तबिल के वास्ते खुदा हम पर रास्तबाजों को वाकई अता करेगा, क्या पहनना, क्या खाना, क्या पीना, जो हमारी जिंदगियों के लिए ज़रूरी है। ना सिर्फ ये, हर दूसरी चीज़ जो हम खुदा की बादशाही के लिए मांगते हैं, खुदा हमें कसरत से बख्शता है। भाइयों और बहनों, ये है क्यों ये खुदा में जिंदा रहने की एक बरकत है। हम जिंदा नहीं रहते हमारे पास क्या है, बल्कि खुदा पर ईमान के साथ जिंदा रहते हैं। ये है क्यों रास्तबाज जिस्म और रूह के लिए दौलत के साथ जिंदा रह सकते हैं। अगर हम वाकई ईमान के साथ जिंदा रहते हैं जो खुदा पर यकीन रखता है, तो हम जिस्म और रूह के लिए कसरत से जिंदा रह सकते हैं। खुदा ने हमें फरमाया, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। इसका मतलब है कि हमें यकीनन खुदा की बादशाही और रास्तबाजी की तलाश के लिए, खुशखबरी के लिए और दूसरों की जानों की निजात के लिए उसकी कलीसिया के साथ इत्तेहाद से रहना चाहिए। खुदावंद हमारे लिए फरमाता है, हम पानी और रूह की खुशखबरी के लिए जिंदा रहें। इसका मतलब है कि खुदा हमें हर चीज़ बख्शेगा अगर हम खुदा की रास्तबाजी के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ का वादा है जिसका खुदा आपको और मुझे यकीन दिलाता है। ये वो आयत है जो खुदा ने हम में से उनके साथ किया जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। अगर हम अपने दिल देते हैं और खुदा की खुशखबरी के लिए ज़िंदा रहते हैं, तो खुदा यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगियों को मुहैया करने के वसीला से क्या खाना पीना और पहनना है ज़मानत देगा। खुदा कम से कम ज़मानत देगा कि हम जिस्म और रूह के लिए दौलत के साथ ज़िंदा रह सकते हैं। प्यारे साथी मसीहों, खुदा के लिए जिंदा रहें। क्या आप अपनी ज़िंदगी के बारे में परेशान हैं? खुदा खुशखबरी के लिए ज़िंदा रहें, पानी और रूह की खुशखबरी के लिए ज़िंदा रहें, खुदा के काम पर अपना जहन लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मुस्तकबिल की ज़मानत दी जाती है। इंसानों के तौर पर हम कब सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं? जब हमारी अशियाएँ कोई मायने नहीं रखता या कितनी छोटी हैं जिन पर हम जिंदा रहते हैं तबाह हो रही हों, तो हम सबसे ज़्यादा गैर महफूज महसूस करते हैं। हम बल्कि तस्कीन महसूस करते हैं अगर हम सब जो हम रखते हैं तबाह होता है और हम खाली हाथ हैं। क्योंकि हम कुछ बचाने के लिए नहीं रखते और किसी चीज़ का ज़खीरा नहीं रखते, तो खुदा पर ईमान के साथ दोबारा कोशिश करना आसान है। ताहम हम ज़्यादा गैर महफूज हैं जब हम मुकम्मल तौर पर नुकसान नहीं उठाते और ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं कि अब तक क्या बाकी है। हम खौफ में कितना परेशान हो जाते हैं कि हम खो सकते हैं हत्ता कि बाकी क्या है। प्यारे साथी मसीहों, आया हम कोई चीज़ बाकी रखते हैं या कोई चीज़ बाकी नहीं रखते? सिर्फ खुदावन के लिए खुशखबरी के लिए ज़िंदा रहें, खुदावन पर भरोसा रखें। तब खुदावन ना सिर्फ हमें हम क्या रखते हैं बल्कि हत्ता कि ज़्यादा के साथ भरता है। ये है क्योंकि हमारा खुदावंद हमें कसरत से भरता है। जब हम खुशखबरी के लिए ज़िंदा रहते हैं और हमारा ज़िंदा रहने में मदद करता है जो ही हम इंतज़ाम करते हैं कि हमारे पास क्या है। ये ऐसा ही है। आज के सहीफाना हवाला को जहन पर नक्श करें, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। ये है क्योंकि अगर हम खुदा के लिए ज़िंदा रहते हैं तो खुदा हमें हर चीज़ देने से बच नहीं सकता जिसकी हमें ज़रूरत है। एक भाई था जो दर्जी था। कोई शख्स दर्जी के तौर पर ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता। उसने कहा कि उसे एक सूट सीने के लिए कई रातें रुकना पड़ता था। बस जब उसने कलीसिया के लिए ज़्यादा काम किया, वो तमाम फंड से महरूम हो गया। तब उसने खुदावंद के सामने दुआ मांगना शुरू की। तब से लोगों ने कपड़ों की बजाय उसे बहुत ज़्यादा तरबियती कपड़ों की मांग दी। किसी कंपनी ने उसे कई सौ या कई हज़ार तरबियती कपड़ों की तब बड़ी तादाद में मांग देनी शुरू की। बस जब उसने ज़्यादा कारोबार शुरू किया, उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू किया। इसलिए वो फिर भी ज़िंदा रह सकता था, हत्ता कि गो वो खुदावन की खिदमत कर रहा था। روزی تو روزی ہے، آیا وہ سوٹ یا تربیتی کپڑے بنانے کی ہے، لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو خدا کی حتیٰ کہ زیادہ خدمت کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعا مانگی جب وہ مصیبت میں تھے۔ حقیقت میں ایسے ہی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کوئی شخص جو خداوند کے لیے زیادہ کے لیے زندہ رہ چکا ہے، اس کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم راستباز صرف زندہ نہیں رہتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں کہ خداوند کیا مہیا کر چکا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں بھرتا ہے۔ اگر ہم زندہ رہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، تب ہم یقینی طور پر جلد ہی تباہ ہو جائیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سرت پرت کی ایک بیوہ تھی۔ اس وقت خداوند کی طرف سے سالوں سے شدید خشک سالی تھی۔ قید کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہو گئی۔ آخری چیز جو باقی بچی صرف ایک برتن میں مٹھی بھر آٹا تھا۔ جب اس نے آٹے کو پانی کے ساتھ ملایا اور گوندا تو خمیر کا پیڑا اٹھا جو صرف دو یا تین لوگوں کی بھوک مٹا سکتا تھا۔ اس نے پیڑے کو روٹی بنانے کے لیے بیلنے کے ساتھ بیلا۔ یہودی کھانے کے لیے اس طرح روٹی بناتے ہیں کہ وہ خمیر اٹھے آٹے کو سیدھا کر کے بیلتے ہیں، اور جب آگ بجھ جاتی ہے اور صرف کوئلے کی آگ باقی بچتی ہے تو وہ خمیر کو اس پر ڈالتے ہیں۔ جب وہ ٹکیوں کی مانند روٹی کی چپاتی اپنے اور اپنے بیٹے کے کھانے کے لیے آخری دفعہ بنا رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ وہ اس کے بعد فاقوں کی موت مریں گے۔ تب خدا کا کلام ایلیا ظاہر ہوا، اے عورت کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہاں میرے پاس کچھ آٹا ہے۔ تب اسے گوند اور میرے پاس لا تاکہ میں کھا سکوں۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیونکہ خدا کے خادم نے اسے اسے اپنے پاس لانے کو کہا، اس نے کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ آخری ٹکڑا کھانے والی تھی، اور یہ سب تھا جو وہ رکھتی تھی۔ اس نے اسے کھانے کے لیے خدا کے خادم کو دیا۔ بیوا کے آخری ٹکڑا خداوند کے خادم کو دے دیا جو وہ رکھتی تھی۔ ایسا نظر آیا کہ اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں۔ تاہم تب ناقابل یقین شے واقعہ ہوئی۔ خدا کے خادم نے اسے کھانے کے بعد دعا دی، تب برتن میں سے کبھی آٹا ختم نہ ہوا۔ کلام مقدس اسے بیان کرتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، کلام مقدس فرماتا ہے، بلکہ تم پہلے بادشاہی اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس آیت کے ساتھ دوسروں کو اس کے پیسوں سے ٹھگ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کثرت سے واقعہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جانوں کو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے اور پانی روح کی خوشخبری کی رہنمائی کے لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ خدا کا کلام اپنانا چاہیے۔ اگر ہم واقعی خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں تو خداوند واقعی ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیں، اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پیارے ساتھی مسیحو، میرے پیچھے دہرائیں، اے خداوند میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اب تک غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تب آپ اسے اونچا کہہ سکتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا آپ اب تک اپنی قوت کے ساتھ زندہ رہ چکے ہیں؟ تب ایمان کے ساتھ حتیٰ کہ زیادہ خداوند کو پکڑیں۔ اگر آپ زیادہ سختی سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو یہ پھر بھی تباہ ہو جائے گی۔ آپ حتیٰ کہ اپنی اچھی مضبوط قوت کے ساتھ اسے روک نہیں سکتے۔ یہ ہے کیوں خداوند ہمیں ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے کے لیے فرماتا ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے دل کے ساتھ اور خداوند کی خدمت کرتے ہوئے آیا ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں زندہ رہنا چاہیے۔ تب خداوند یقینی طور پر آپ کو بھر دے گا۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہم نے خداوند کی خدمت کی، تب وہ ہمیں بھرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ ہمیں کثرت سے مہیا کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کی مسلسل خدمت کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں یقینی طور پر بھرے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے عہد کو قائم رکھنا محض قائم رکھنا ہے، آیا کچھ دوسرا نہیں ہے؟ ہماری زندگی ہماری مرضی پر نہیں بلکہ ہمارے ایمان پر انحصار کرتی ہیں۔ ہم خدا کے خادمین کو اسی طرح تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ ایسا ایمان جو تجربہ کرتا ہے کہ خدا ان کے لیے کیا کر چکا ہے۔ جب وہ خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کے لیے زندہ رہتے ہیں तो हमारा ईमान बढ़ नहीं सकता। जब हम खुदावंद के लिए जिंदा रहते हैं तो खुदावंद पर हमारा ईमान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकता है। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप जानते हैं कि खुदा की बरकतें लोगों के लिए एक बोनस की मानिंद हैं जो ईमान के वसीला से जिंदा रहते हैं? बोनस ऐसी चीज है जो ज्यादा दी जाती है। क्या ये हस्ब मामूल या मुतवक्का होता है? खुदा अपनी निजात के साथ साथ बहुत सारे बोनसेस देता है। हम जिंदा रहते हैं क्योंकि खुदा हमें बहुत सारी बरकतें बोनस के तौर पर देता है। अगर वह बोनस अता करता है बल्कि सिर्फ देता है, हम किसके मुस्तहद हैं? तब हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर सिर्फ हम हासिल करते हैं, हम क्या काम करते हैं, तो क्या सुस्त लोग सब मर नहीं जाएंगे? खुदा बोनस में बहुत सारी चीज़ें देता है, वो बरकतें देता है, और हम खुदा के साथ जिंदा रह सकते हैं जो हमें अपने फजल बख्शता है। इसलिए ईमान के वसीला से जिंदा रहते हैं जो खुदा पर यकीन रखता है जिसने हमें बचाया। प्यारे साथी मसीहो, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तब खुदा हम में काम करता है। खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर ईमान रखें, हत्ता कि अगर ये मुश्किल है। खुदा का वादा यह है कि वो हमारी सुनेगा अगर हम उस पर ईमान रखते हैं। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। तजुर्बा करें कैसे खुदा आपको ये सब चीजें अता करता है जब आप जिंदा रहते हैं। मेरा मतलब है कि आपको तजुर्बा करना चाहिए कैसे खुदा भरता है, कैसे वो मुहैया करता है, कैसे आप तजुर्बा कर सकते हैं कि अगर आप ईमान के वसीला से जिंदा नहीं रह चुके हैं। प्यारे साथी मसीहों, ईमान के वसीला से जिंदा रहें। ऐ खुदा, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि तू मुझे पहनाएगा, मुझे खिलाएगा, यानी मैं नंगे बदन के साथ जिंदा नहीं रहूंगा, यानी तू मुझे कपड़े पहनाएगा और मुझे जिंदा रहने की इजाजत देगा ताकि मैं शर्मिंदा ना हूं। और मैं ईमान रखता हूं कि तू मुझे खिलाएगा। मैं ईमान रखता हूं कि तू मेरी जिंदगी में जिंदा रहने की इजाजत देगा। इस तरह ईमान रखें। अगर आप ईमान रखते हैं तो खुदा को आपको इसे अता करना पड़ेगा। क्या हमारा खुदा ऐसा है जो ऐसा नहीं कर सकता? क्या वो एक ऐसा खुदा है जो खिला नहीं सकता? खुदा तो खुदा है जो ये सब करने के लिए काफी ताकतवर है। इसलिए हमें यकीनन अपनी जाती पैमानों से छुटकारा पाना चाहिए और कादरे मुतलिक खुदा पर ईमान रखना और भरोसा करना चाहिए। कलाम पर ईमान रखें, यकीन करें, कलाम का यकीन करें और ईमान से भरपूर हों। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप इन बातों को समझते हैं? क्या आप अब तक अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में फिक्रें रखते हैं? क्या आप अब तक अपनी मुस्तकबिल की जिंदगी के बारे में फिक्रें रखते हैं? मैं भी बहुत सारी फिक्रें रखता था जब मैं खसूसी तौर पर कॉलेज में सीनियर था। लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करने वाला था, जब मैं ताज़ा इंसान था, मैं बछड़े की मानिंद स्कूल जाता था, मुझे कुछ फिक्र नहीं थी। आए कुछ केक खा लिए, मैं बेफिक्र था। लेकिन अपने दूसरे साल के सानवी सेमेस्टर में मैं परेशान होना शुरू हो गया। मैं जल्द ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लूँगा, ओ तब मैं क्या करूँगा, ओ मैं वाकई मुसीबत में हूँ। जब मैंने इसके बारे में सोचा तो वाकई एक बड़ी मुसीबत थी। मैंने हत्ता कि एक भूख खो दी। हकीकत में ना सिर्फ तालिबिल बल्कि हर कोई बच नहीं सकता, बल्कि हत्ता कि अपने निजात याफ्ता होने के बाद परेशान होता है। मुझे कैसे ज़िंदा रहना चाहिए, मुझे कैसे खाना चाहिए? ताहम ये उनके लिए नई शुरुआत है जो नए सिरे से पैदा हुए हैं। अगर हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हमने माजी में क्या किया, किस किस्म की नौकरियां हम करते थे, हम कैसे रहे, मजीद कोई मायने नहीं रखता। ताहम आप किसकी भी तरह माजी में रहे हों, अब यानी आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, आपको ज़रूरी नई शुरुआत करनी चाहिए। हम नया साल नया दौर बना रहे हैं। खरूज 12 में यह लिखा हुआ है कि यह महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। खरूज की किताब और उसका 12 बाब उसकी 2 आयत। خدا نے مصر سے اپنی غلامی سے ان کے خروج کو یاد میں اسرائیلیوں کو ایک نیا کیلنڈر دیا۔ خروج اسرائیلیوں کو تاریخ کا نیا آغاز تھا۔ انہوں نے بحر کلزم موت کے سمندر کو پار کیا اور وعدہ کی سرزمین کی طرف اپنے پہلے قدم اٹھانے کے لیے بڑھائے۔ وہ مزید فرعون کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس کی بجائے خدا کے لوگ بن گئے۔ اسی طرح اسی لمحے سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہم نئی مخلوقات ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں حتمی طور پر مختلف نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ماضی کی زندگی کی توسیع ہے، توسیع نہیں ہے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح کے ساتھ مر گئے اور اس کے ساتھ پھر جی اٹھے اور نئی زندگی رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوں، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ رومیو 4:6۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ 2 کرنتھیوں 5:17۔ تمام چیزیں نئے سرے سے پیدا ہوں کے لیے نئی بن چکی ہیں۔ ہم نئی چیزوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ کام پر جاتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ آئیں اب سے نئی چیزوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ کسی شعور میں نئے سرے سے پیدا ہوں کی زندگی کی سادگی سے ان کی ماضی کی زندگی کی توثیق کی معنی نظر آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جب خدا ہمیں دکھاتا ہے تو یہ مکمل طور پر مختلف زندگی کی راہ اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، یعنی سب نیا ہے۔ ہم نئی مخلوق ہیں۔ ایک بار جو ہی ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ آپ اور میں اب نئی مخلوق ہیں، اب پرانی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کی تمام کمزوریاں، آپ کا خوف، آپ کی زندگی کا پرانا طریقہ جو نثار کرنے کے لیے استعمال ہوا، محض انسانی طریقے گزر گئے۔ اب آپ نئی مخلوق بن گئے، اب ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہم ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے، جس طرح اس آیت میں ہے، راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اول ایمان ہے، دوم ایمان ہے، سوم اور چارم بھی ایمان ہی ہے۔ جب گر رہے ہیں ہم ایمان کی بدولت زندہ رہیں گے، جب ہم سختی سے چل رہے ہیں ہم ایمان کی بدولت زندہ رہیں گے، جب کسی حالات میں ہم ہیں ہم ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ اور یہ ہے ایمان سب کیا ہے۔ ایمان نے ہمیں زندہ کیا، ایمان ہمیں زندہ کرتا ہے، یہ درست جواب ہے۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس ہمیں یہ پیغام بتاتا ہے۔ آج کا صحیفہ اور یہ حوالہ اس لیے، فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ یہ ہے کیونکہ یہ خداوند پر منحصر ہے۔ یہ ہے کیوں خداوند نے ہمیں مستقبل میں چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہونے کے لیے فرمایا ہے۔ کیا مکمل ہوگا؟ محض کیونکہ ہم مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ خداوند ہم سے فرماتا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ہمیں آج یا کل ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ ہم خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ مستقبل کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم ایمان کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں، اے خدا میرے لیے یہ کر، میرے لیے وہ کر۔ دعا ایمان کے ساتھ چیلنج ہے۔ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنا کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا، یہ ہے سب جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری ذاتی مرضی اور قسم کیونکہ ہم مستقبل میں کیا کریں گے فضول ہے۔ ہم اپنے مستقبل کی یا بذات خود کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے، کچھ بھی یقین سے نہیں ہے۔ یہ کیوں خدا تمام لشکروں کے خداوند نے ہمیں آج کے صحیفہ کا سبق بتایا، تاکہ ہم پریشان مت ہوں کیا کھانا، کیا پہننا اور کیا پینا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہم زندہ رہیں گے، کیسے ہمارے جسم کی دیکھ بھال ہوگی؟ آئے ہم پریشان نہ ہوں۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ یہ ہے میں کتنا لمبا ہوں، لیکن کیا میں حتیٰ کہ 1 سینٹی میٹر اور لمبا ہو جاؤں گا کیونکہ میں پریشان ہوں؟ کیا ایسا ہوگا؟ اگر ہم تمام رات اس طرح اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یہ ہے میں کیا ہونا چاہتا ہوں، कुछ नहीं है जो काम करता है, क्योंकि हम परेशान हैं। क्या हम रोटी हासिल करते हैं? क्या हम ज्यादा पैसा कमाते हैं? हमें किस चीज के बारे में फिक्रमंद नहीं होना, बल्कि हर चीज में दुआ इल्तिजा के वसीला से आपकी दरखास्तें खुदा को पेश करनी चाहिए। कसर से दुआ मांगे, ईमान के साथ खुदा से मांगे। ये है हमें क्या करना है, ईमान रखना है, दुआ मांगना है, वो है ये हमें क्या करना है। अगर आप परेशान हैं, खुदा से दुआ मांगें, खुदा पर भरोसा रखें, साथी मसीहों खुदा पर ईमान रखने के वसीला से अपनी जिंदगी गुजारें। क्या आप समझते हैं? हाँ, हम जिंदा रहते हैं अगर हम ईमान रखते हैं। क्या हम मर जाते हैं अगर हम ईमान नहीं रखते? प्यारे साथी मसीह, अगर आप खुदा पर ईमान नहीं रखते, आप मर जाएंगे। अगर आप अपनी सारी जायदाद जो आप रखते हैं इनसार करते हैं, तो यह तबाह हो जाएगी। बिल्कुल जिस तरह मटर का बर्तन खुलता है और मटर गिरते हैं और सब तबाह हो जाते हैं, लेकिन कितने सारे मटर एक मटर का बर्तन रखता है? क्या ये 100 मटर रखता है? नहीं, सिर्फ 4 या 5 मटर। प्यारे साथी मसीहो, आए हम सब इसके बारे में सोचें। क्या आप अपनी तमाम जिंदगी सिर्फ आपके पास क्या है, मसलन अपनी ताकत, अपनी सलाहियत, अपनी सेहत और अपनी दौलत से गुजार सकती हैं? मेरा मतलब है कि आपको गिनना चाहिए, आया आप अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन के लिए सारे इंसानी फराइज निभा सकते हैं या नहीं। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप गिन सकते हैं? कोई मायने नहीं रखता हम कितनी दौलत रखते हैं, अगर हम सिर्फ उसके साथ जिंदगी रखते हैं, हम जिंदा नहीं रह सकते। तब वो क्या है जिसकी हमें ज़रूरत है? हमें खुदा और उसके कलाम पर ईमान रखने की ज़रूरत है। एक चीज जो वाकई ही आपके सामने बुलंद आवाज से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ खुदा पर ईमान रखना है। हत्ता कि आप अपनी आंखों के साथ खुदा को नहीं देख सकते और उस पर ईमान रखना निहायत ही बेबुनियाद नजर आता है। आपको उस पर ईमान रखना चाहिए, सिर्फ उस पर ईमान रखें, यही है वो। कलाम मुकद्दस बयान करता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद, अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई है। इब्रानियों का खत उसका 11:1-2 आयत। अतः कि अगर कोई सबूत आंख से नहीं देखा जाता, ना काबले कम चीज हाथ में पकड़ने वाली है, हमें यकीनन ईमान के साथ किसी भी चीज को खुदा से मांगना चाहिए। ऐ खुदा मुझे दे, मैं ईमान रखता हूं, मेरी खाने कपड़े और मेरी जिंदगी में घरेलू मसाइल की सारी फिक्र कर, मेरी अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए मदद कर। अगर आप उस पर ईमान रखते हैं और उसकी मदद के लिए दुआ मांगते हैं, तो वो जवाब देता है। ताहम अगर आप ईमान नहीं रखते और अपनी जाती कुवत पर इनसार करते हुए, अपने जाती हिसाब और किताब पर इनसार करते हुए जिंदा रहते हैं, तब आप मर जाएंगे। आप हत्ता के छोटी सी रकम खो देंगे जो आपके पास है, और वाकई भिखारी बन जाएंगे। आयत राजबाज ईमान से जीता रहेगा का मतलब है कि वाहिद रास्ता कि कोई राजबाज शख्स जिंदा रह सकता है, ईमान के वसीला से है। राजबाज ईमान से जीता रहेगा। रोमियों का खत 1:17 आयत, इब्रानियों का खत और उसका 10:38 आयत। प्यारे साथी मसीहो, कुछ नहीं बल्कि ईमान है जो खुदा पर यकीन रखता है। प्यारे साथी मसीहो, क्या आप ईमान रखते हैं? ईमान किसी चीज के लिए नहीं जो दूसरों से ताल्लुक रखती है। आप अपना ईमान किसी दूसरे को इसे देने के लिए नहीं उठाते। ईमान आपका अपना है। हम सिर्फ खुदा और खुदा के कलाम पर ईमान रखने के वसीला से जिंदा रह सकते हैं। ये खुदा और उसके कलाम पर हमारे जाती ईमान के मुताबिक काम करता है। खुदा के कलाम पर ईमान रखना ज्यादा अहम है। खुदा से ईमान के साथ दुआ मांगे, हर चीज के बारे में परेशान होने की बजाय। जैसे जैसे हम उसकी मर्जी के पैरवी करते हैं, जिंदा रहेंगे।